ओम शांति। ये क्लास चल रहा था 30 मार्च 1963 का। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि स्थापना का साक्षात्कार है तो विनाश का भी साक्षात्कार है। तुमको हेवन का साक्षात्कार कौन कराते हैं? जरूर जो स्थापना करने वाला है वो हेवन का साक्षात्कार भी कराते हैं, क्योंकि परमात्मा ही तो नई दुनिया रचेंगी ना। वहां हेवन में गॉड गॉडेस का राज्य था और वो मनुष्य सृष्टि भी जरूर बुद्धि को पाती है। वृद्धि पाते पाते आखिरी देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं 33 करोड़ हो जाती है और हर धर्म की आत्माएं अंत तक आती रहती है। ऐसी नहीं कि देवता वर्ण की आत्माएं त्रेता के अंत तक ही आती हैं, बाद में नहीं आती हैं। तो 33 करोड़ देवताएं गए हुए हैं। ये राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण ये सब देवताएं थी। परंतु वो देवताएं अब नहीं हैं। तो हिस्ट्री मस्ट रिपीट, फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना चाहिए। ये बातें जब तू सुनाओ तो उनको रिक्लेक्ट हो करके याद पड़े कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने वाला था और वो भगवान ही था। वो बनने वाले भगवान भगवती थे। उसको स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि वहां सात सही स्थिति में रहने वाले थे। अभी वो स्वयं स्थिति में रहने वाले नहीं है तो अभी वो स्वर्ग भी नहीं है। क्योंकि सतो प्रधान दुनिया तमो प्रधान भी बनेगी ना। सतो प्रधान होते हैं तो स्वयं स्थिति में होते हैं और तमो प्रधान बनते हैं तो देह की स्थिति में आ जाते हैं। अभी तुम जान गए हो इन स्वयं स्थिति और परिस्थिति की बातों को समझाने में भी मजा आता है। तो ऐसे नहीं कहना है कि भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। नहीं, 5000 वर्ष के अंदर स्वर्ग और नरक दोनों होता है और मनुष्यों ने तो सुना है स्वर्ग को लाखों वर्ष हुए। अभी तुम तो बताते हो कि सिर्फ 5000 वर्ष हुए जब देवताओं का राज्य शुरू हुआ था। और सभी धर्म तो बाद में आए हैं। तो ये सारी बातें रिकलेक्ट करनी पड़े। जैसे कोई बाबा से जीवन कहानी पूछते हैं तो बाबा की जीवन कहानी की बातें रिकलेक्ट करनी पड़ती हैं। यहां तो हम शिव बाबा की बायोग्राफी बताते हैं। वो तो आसुरी मनुष्यों की बायोग्राफी लिखते हैं। कौन वे माने कौन? बीके वालों ने कौन सी आसुरी मनुष्यों की बायोग्राफी लिखी? ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी लिखी ना, तो परमात्मा की जीवन कहानी थी या शिव बाबा की जीवन कहानी थी? शिव बाबा की जीवन कहानी का मुख्य काम कौन सा है? कर्तव्य दिखाना पड़े ना। शिव बाबा की जीवन कहानी का मुख्य अंश वो है जो और कोई धर्म पिताओं का नहीं है। कोई भी धर्म पिता ने स्वर्ग की स्थापना नहीं की और नरक की दुनिया का विनाश नहीं किया। ये काम एक ही शिव बाबा करते हैं, पतित दुनिया को खलास करके नई पावन दुनिया स्थापन करना। एक ही परमपिता परमात्मा का कार्य है। तो ये तो मुख्य कार्य है जो उनकी जीवन कहानी में आना चाहिए। ये है दैवी संप्रदाय की जीवन कहानी जो गाई जाती है। तीस तीन त्रेसठ की वाणी का दूसरा पेज। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पांच हजार वर्ष पहले था या अंदर था? 5000 वर्ष के अंदर था या 5000 वर्ष से पहले था? है अंदर था, उसकी हिस्ट्री है शास्त्रों में। जब तिथि तारीख बताई जाती है तो हिस्ट्री बताई जाती है। तो जिन लक्ष्मी नारायण के राज्य की बात शास्त्रों में आई है वो नर से नारायण बनने वाले थे। कहेंगे संगम युग था, स्वर्णिम संगम युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो फिर उसके पहले क्या था? जरूर कहेंगे कलयुग था। अभी भी वो ही कलयुग है तो जरूर इसके बाद सतयुग होगा। तुमको तो भोलानाथ शिव ने सारा राज समझाया है। जो राज समझाया है उसी पर ये गीत बने हुए हैं। ये नॉलेज और कोई नहीं दे सकता। बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, विद्वान पंडित आचार्य आए, कोई ने भी ये नॉलेज नहीं दी होगी। कोई बता नहीं सकता कि न लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, कब मिला। वो तो कह देते हैं कि गीता ज्ञान द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान ने दिए। अरे कृष्ण स्वयं 16 कला संपूर्ण बनने वाला है, यह बनाने वाला है, वो तो स्वयं ही 16 कला संपूर्ण बनने वाला है। नर को नारायण बनाने का काम एक परमपिता परमात्मा का है, और कृष्ण तो बच्चा है, वो नर को नारायण कैसे बनावेगा। कलयुग अंत में तो कोई राजा रानी भारत में थे ही नहीं, जिनका कोई को वर्षा मिले, न वहां कलयुग के अंत में सोने के महल होते हैं, वहां तो भारत कंगाल हो जाता है। फिर बताए कोई कि दक्क से सतयुग आदि में इतना धनमाल कहां से आ गया। जो सोने के महल बन गए, इसको जादू का खेल कहेंगे। अंतिम जब विनाश होता है तो बड़ी जोरों से सारी दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आते हैं। ये पत्थर के पहाड़ नीचे चले जावेंगे और सोने की खानियां ऊपर आ जावेंगी। सारी दुनिया में समंदर ही समंदर हो जाएगा, भारत में ही किनारा होगा। समंदर जोर से उबाल मारेगा, बौखलाहट आएगी, समंदर के अंदर के सारे हीरे रतन जवाहरात कहां पहुंचेंगे, किनारा कहां होगा, है भारत में ही होगा। तो शास्त्रों में इसको जादू का खेल कह दिया है, बरोबर बाबा जादूगर है। जो पति दुनिया को पावन कंगाल को एक ही जन्म में सरताज बनाई देते हैं, वो जादूगर होते हैं, वो भी पैसे की रिद्धि सिद्धि से लोगों को ठगते हैं। लोहा से सोना बनाए देते हैं, तो ये बेहद का बाबा है जो फिर सारे भारत को कंगाल मोहताज से एकदम बैकुंठ बनाए देते हैं। ये है ईश्वरीय रिद्धि सिद्धि। जो रिद्धि सिद्धि दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं कर सकता, वो तो झूठ ही रिद्धि सिद्धियां होती हैं अल्पकाल की, और ये तो प्रैक्टिकल बात है। 2000 साल के लिए नई दुनिया खड़ी हो जाती है। बच्चे साक्षात्कार से भी देखते हैं, तो बच्चों को जरूर खुशी होती है, खुशी का पारा चढ़ेगा ना। हम जानते हैं बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए हमको राजयोग सिखा रहे हैं। माया पर जीत पाने का ये जादू है, ये जादू का खेल सिखाने वाला वेद का बाप है, ये राज की बातें हैं। उन्होंने तो कृष्ण का नाम डाल दिया है, अब कृष्ण बच्चा राज की बात कैसे बतावेगा? भक्ति मार्ग में तो राजाई के लिए योग नहीं सीखा जाता है, वहां तो राजाई प्राप्त करने के लिए दान पुण्य करते हैं। यहां तो बाबा राजयोग सिखाते हैं। और ये राजयोग सीखने के लिए निवृत्ति मार्ग वाले नहीं चाहिए, कौन चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग वाले चाहिए, नर नारी दोनों चाहिए, तब ही राज की बात सीख सकेंगे। बच्चा बुद्धि तो न सिखा ही सकते हैं और न सीख सकते हैं। उन्होंने तो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा को ही राजयोग सिखाने वाला भगवान साकार में मान लिया है। ये सब झूठी बातें हैं। राजयोग से तो नर से नारायण बने हैं, फिर नर से कोई नारायण बना क्या? अगर नर से नारायण बना होता तो ब्रह्मा का नाम दुनिया में बाला हो जाता, मंदिर बनाए जाते, पूजा होती, मूर्तियां बनती, परंतु ब्रह्मा की तो मूर्तियां नहीं बनती हैं, उनको तो बच्चा बुद्धि कहेंगे। ब्रह्मा से ज्यादा बुद्धि तो मम्मा की चलती थी। तो ये राजयोग नर और नारी दोनों को सिखाया जाता है, ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है, ये स्कूल ही ऐसा है। बाप राजाओं का राजा बनाने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। और फिर ये राजयोग कितना सहज है, इसलिए इसका नाम ही है सहज ज्ञान, सहज राजयोग। इतना सहज है कि अबलाएं कुबजाएं भी बैठ पड़ती हैं। पुजारी पति से अब पावन बन रही हैं। तो ये पावन बनने वाली बुढ़िया फिर क्या करेंगी? ऐसे नहीं कि ये पावन बनने के बाद मुक्ति धाम में बैठ जाएंगी, नहीं, फिर यहां नई दुनिया में आवेंगी, पुरानी दुनिया में वापस नहीं आवेंगी। पुरानी दुनिया तो खलास हो जाएगी, पुरानी दुनिया में होता है जीवन बंध, सबका जीवन बंधन में है। भगवान आकर के जीवन बंध से मुक्ति देते हैं तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में पहुंच जाती हैं। तो कहेंगे जीवन बंध से जीवन मुक्ति में आते हैं। अभी तो सभी कंगाल हैं, कंगाल हैं तो सोना भी कोई के पास नहीं रहने देते, सोना भी ले रहे हैं। फिर बताओ क्या जा करके रहेगा? सोना चांदी हीरे जवाहरात देखने को नहीं मिलते, फिर तो जमीन रहेगी। तो देखो ऐसा इंसॉल्वेंट भारत फिर धक से कितना सॉल्वेंट बन जाता है। ये जमीन जो कलराठी होती जाती है, खाद के बगैर पैदाइश ही नहीं होती। ये जमीन, ये खानियां सब भरतू हो जाएंगी। अभी तो ये सब खाली खोखली हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि सागर हीरे जवाहरात ले आया, हीरे जवाहरातों की थालियां भर भर करके ले आए। कहां की कहानी है? नहीं है, जब लंका पर चढ़ाई करने गए तो दिखाते हैं सागर को जब तीर मारा तो खानियां निकल आई, थाल में भर भर के ले आया। ये सागर से भी बहुत माल निकलेंगे। और नई नई खानियों से भी ढेर के ढेर निकलते रहेंगे। तो ये सब प्रकार का वर्षा बच्चों ने इस संगम युग पर ही शिव भोलानाथ से पाया है। और शंकर के लिए तो दिखाते हैं कि आंख खोलने से ही विनाश हो गया। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? हा? अच्छा हुआ तो जल्दी से आंख खोल दी जाए। है डर तो नहीं लग रहा है? नहीं है? याद रखना, बोला ना तो उनको कहा जाता है जो हीरे जवाहरातों से बोल झोली भर देते हैं। विनाश करे उसको भोला नाथ थोड़े ही कहा जाता है। कहते भी हैं शिव शंकर भोले भाले, किसका नाम पहले लेते हैं? शिव का नाम पहले लेते हैं, फिर भोला नाम भी पहले लगाया हुआ है। तो कौन भोला हुआ? शिव ही तो भोला हुआ। शंकर का तो नाम भी बाद में लेते हैं और उनका भोलापन तो नहीं दिखाया है, उनको तो कहते हैं भाले। तो विनाशकारी हुआ ना, वो कहां से झोली भरेंगे? वो तो सारी दुनिया की झोली खाली कर देते हैं। झोली कौन भरता है? झोली तो शिव बाबा भरते हैं। ज्ञान सागर हमारी झोली भरते हैं ज्ञान रत्नों से। तो ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? है? 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 इकट्ठे हैं शिव शंकर।
पैसा पहले इकट्ठे दे दो फिर माउंट डाउन ले जाना।
नहीं, इस संबंध में जो बात हो रही है कि ज्ञान सागर शिव भोलानाथ है, वो हमारी झोली भरते हैं और शंकर तो सारी दुनिया की झोली खाली कर देते हैं, आंख खोली और विनाश करा देते हैं। तो ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? उन्हें विनाश से डर लगता है या विनाश की बात सुनकर के खुशी होती है? उन्हें तो डर लगता है, अंदर अंदर से अविश्वास भरा पड़ा है कि विनाश होना ही नहीं है। अंडरग्राउंड कंक्रीट के महलमाड़ियां बनाते रहते हैं, कितना पैसा इकट्ठा करते हैं, अब झोली भरने वाला निराकार है या साकार? झोली भरने वाला तो निराकार है, शंकर निराकार है या उसकी मूर्तियां बनती हैं? उसकी तो मूर्तियां बनती हैं। मूर्ति साकार की यादगार है या निराकार की यादगार है? मूर्ति तो साकार की ही बनाई जाती है, शंकर तो आकार ही दिखाते हैं। आकारी माने क्या? आकारी का मतलब है मनन चिंतन मंथन में जिसकी बुद्धि लगी रहे, साकारी दुनिया की बातों में जिसकी बुद्धि न जाए, देह में, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में अगर बुद्धि जाती है तो साकारी कहेंगे या आकारी कहेंगे? साकारी कहेंगे। तो शंकर रचना है कि रचयिता है? शंकर भी रचना है। तो महिमा सिर्फ एक निराकारी शिव बाबा की है, उनके लिए गाते भी हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा ठाव। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल हूं। क्या बड़े से बड़ा काल कौन है? जो कालों का काल है वो तो महाकाल कहा जाता है। फिर आखिरी काल कौन है? जिसके बाद कोई को काल नहीं खाएगा। अरे सबको नंबर वार काल खाता है या नहीं खाता है? तो आखिरी काल भी होगा ना, कौन है? है? अरे सबसे अंत में काल किसको खाएगा? है? शंकर को। शंकर को काल नहीं खाएगा, वो कभी मरता नहीं है, कभी जन्म भी नहीं लेता है। ये तो बेहद की बात है, जन्म मरण का चक्र मनुष्य आत्माओं को आता है, मनुष्य उनको कहा जाता है जो आदि से लेकर के अंत तक मनन चिंतन मंथन में ही रहते हैं। अपने पुरुषार्थ से सदैव के लिए निराकारी स्टेज में नहीं जा पाते। और शंकर का नाम तो किसके साथ लिया जाता है? शिव निराकार के साथ नाम जोड़ा हुआ है, तो जरूर निराकारी बनता है। अभी तो मैं कहता हूं मैं गाइड बनकर के आया हूं, शंकर कोई गाइड नहीं है। मेरे पीछे सभी मच्छरों से दस जावेंगे। आरंभ में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती जाती है। जाड़ सतो प्रधान से अवश्य तमो में आएगा। तो फिर तमो प्रधान जाड़ का विनाश भी होना चाहिए। अभी फिर से चक्कर रिपीट हो रहा है, परंतु इस हूबहू रिपीटेशन के राजी को, इस राज को अनन्य बच्चे ही समझ सकते हैं, नहीं तो संशय पैदा होता रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अनन्य बच्चे ही इस राज को जानते हैं और कोई तो जानते ही नहीं कि स्वर्ग में क्या था। ये खरी समझानी है, जो बुद्धि में रहने से बड़ी खुशी होती है और है भी बहुत सहज। कोई को भी समझा सकते हो कि भारत सोने की चिड़िया थी, क्या मतलब है? है सोने की चिड़िया का मतलब क्या है? हाँ, ऐसी चिड़िया थी जिसको हर धर्म के हर देश के लोग अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। उन स्वर्गवासियों के चित्र भी रखे हुए हैं। वो चित्र कौन से युग के हैं? जो चित्र रखे हुए हैं स्वर्गवासियों के, वो कौन से युग के हैं? अरे है? संगम युग के चित्र हैं, संपूर्ण स्टेज के चित्र हैं, न सतयुग के हैं न कलयुग के हैं। पूछेंगे ये क्राइस्ट का चित्र कब का है, तो कोई भी झट बतावेंगे ये 2000 वर्ष पहले का है। वैसे ही ये देवताओं का राज्य भी 5000 वर्ष पहले था। लक्ष्मी नारायण का राज्य अब नहीं है, वही लक्ष्मी नारायण अभी शूद्र बने हैं। कब की बात हुई? शूद्र बने हैं है? अभी कलयुग नहीं है, अभी है या नहीं? संगम युग है, तो संगम युग में ब्राह्मण होते हैं या शूद्र होते हैं? यहां तो कहा वही लक्ष्मी नारायण अभी शूद्र बने हैं। कब की बात हुई? 63 में ये वाणी चली, उस समय कोई ब्राह्मण थोड़े ही थे, शूद्र वंश में थे या ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन चुके थे? शूद्र वंश में थे। फिर अभी शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हैं। टाइम चल रहा है, ये शूद्र से ब्राह्मण बनने का टाइम उन्होंने लक्ष्मी नारायण के लिए कब तक के लिए निर्धारित किया? 63 से लेकर है? नहीं, 69 18 जनवरी तक। इस टाइम के अंदर अंदर उनको शूद्र से क्या बन जाना है? ब्राह्मण बन जाना है। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनना है। और पहला ब्राह्मण कहे या बाद वाला ब्राह्मण कहें पहला ब्राह्मण कहें, तो इन वर्णों पर भी समझाना सहज है। चौरासी जन्म हम चारों वर्णों में चक्कर लगाते हैं, ये हमारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है। और ये ईश्वरीय जन्म ब्राह्मणों का संगम पर होता है। कब तक? कब तक होता है? फिर ब्राह्मण से क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। तो कोई टाइम निर्धारित होगा कि देवता वर्ण में कब तक जन्म लेते हैं। कोई आखिरी पॉइंट है? अच्छा, आखिरी नहीं तो शुरुआत का पॉइंट है,
है? 76
से ब्राह्मण, 76 से कहेंगे, शूद्र से ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण से देवता बनना शुरू हुआ। क्योंकि ब्रह्मा द्वारा शूद्र को ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मणों को बाप डायरेक्ट आकर के शिक्षा देकर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। डॉक्टर से डॉक्टर बनाया जाता है, इंजीनियर से इंजीनियर बनाया जाता है। तो देवता बनाने के लिए कौन चाहिए? जरूर देवता ही चाहिए। जो बड़े में बड़ा देवता है उसको महादेव कहा जाता है। वो महादेव भगवान भगवती का भी टाइटल बनता है। वास्तव में भगवान तो एक को ही कहा जाता है। फिर वही देवता वर्ण से फिर क्षत्रिय वर्ण में 12 जन्म लेंगे। क्यों? देवता वर्ण वाले 13 जन्म नहीं लेते हैं कोई, है? कौन? फर्स्ट ग्रेड वाले देवता 13 जन्म लेते हैं या सेकंड ग्रेड वाले देवता 13 जन्म लेते हैं? सेकंड ग्रेड वाले देवता जो डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाले नहीं है, वो 13 जन्म 13 त्रेता में लेते हैं। इसलिए उसका नाम भी क्या पड़ा है? त्रेता युग। क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते वर्ण बदलते जाते हैं। हम ही इन वर्णों में ट्रांसफर होते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो में जाते हैं। तो बताओ, सबसे जास्ती अलौकिक जन्म किस समय का है? सतयुग का है, त्रेता का है, द्वापर का है या कलयुग का है? संगम युग का है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको तो ये ज्ञान की बातें जैसे उंगलियों पर याद रहती हैं। ये भी बायजोली है, अथवा कहें स्वदर्शन चक्र है। स्वात्मा को अपने 84 जन्मों के चक्कर का ज्ञान मिला है। कि हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस नाम रूप से कौन कौन से स्थान पर 84 जन्म लेते हैं। विराट रूप के भी 84 जन्म के चित्र मिलते हैं।
क्या कहा? वो विराट रूप को जो दिखाया है वो कोई संगम युग का नहीं है, उसमें देवताएं भी दिखाए हैं, राक्षस भी दिखाए हैं, जानवर भी दिखाए हैं। तो ये जानवर और राक्षस कहाँ होते हैं? द्वापर कलयुग में होते हैं। देवताएं कहाँ होते हैं? है? देवताएं होते हैं सतयुग में। और भगवान भगवती कहाँ होते हैं? संगम में भगवान भगवती होते हैं। तो ये विराट रूप के छपे हुए चित्र भी हैं जो मिलते हैं 33 की वाणी का तीसरा पेज। तो उन विराट रूप के चित्रों पर भी समझा सकते हो। कि भारत की वृद्धि कैसे होती है, भारत वर्णों में कैसे आते हैं, सो ये नाटक सारा बना हुआ है भारत पर। इसलिए मुरली में बोला है ये रामायण की कहानी सारी भारत पर है, परंतु समझाने का खेर चाहिए। रामायण की कथा कहानी भारत पर है या राम के ऊपर है? है? राम के ऊपर है, उसका नाम ही रख दिया रामायण। आयन माने घर। ये रामायण जैसे राम का घर है, राम कथा का, तो भारत नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि राम को कौन से युग में ले गए हैं? त्रेता में ले गए हैं। अब हर एक को अपना धर्म प्रिय है, परंतु हमारा धर्म सभी से वंडरफुल है। क्योंकि और धर्म वाले इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन इन वर्णों में नहीं आते हैं। आते हैं वो ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण ही नहीं बनते पूरे, बनते भी हैं तो नीची कुरी के ब्राह्मण बनते, पक्के ब्राह्मण नहीं बनते। तो नयन वर्णों में आते हैं, नयन बातों को लोग समझेंगे। जो हमारे पक्के देवता धर्म वाले होंगे वो ही इन बातों को समझेंगे, तो उन्हों को समझा सकते हैं कि कैसे अब हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर तो निराकार को कहा जाता है, परंतु वो निराकार भी जरूर साकार में आकर के ईश्वरीय संतान बनाते हैं। फिर हम दैवी संतान बनेंगे, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनेंगे। तो ये सारा ज्ञान अभी हम ब्राह्मणों को है। और जो पक्के ब्राह्मण होते हैं उन्हीं का ही तीसरा नेत्र खुलता है। जो ब्राह्मण बनते नहीं उनका तीसरा नेत्र ज्ञान का मनन चिंतन मंथन वाला खुलता भी नहीं। अभी तुम बच्चों के नंबर वार नेत्र खुलते जाते हैं, त्रिनेत्री के बच्चे क्या होंगे? त्रिनेत्री होंगे। जब हम शूद्र थे तो नहीं जानते थे, जब हम देवता बनेंगे तो भी हमको पता नहीं रहेगा। अगर पता पड़ जाए तो क्या होगा? है? अगर देवताओं को पता पड़ जाए इस ज्ञान का तो क्या नुकसान हो जाएगा? उनको दुख पैदा हो जाएगा कि हम है? हम नीचे गिर जाएंगे। तो वहां तो दुर्गति होती नहीं, मन में दुर्गति की कोई भी बात आती ही नहीं। तो इस समय सारा दिन नॉलेज बुद्धि में फिरता रहे तो जरूर तुम्हारी बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, परंतु क्या परंतु है? परंतु ये दुनिया भी माया बुलाए देती है, इसलिए जो मजा आना चाहिए वो मजा नहीं रहता है। नहीं तो यहां मुरझाने की तो बात ही नहीं है। कहां संगम युग में ये संगम युग तो सारा ही मौजों का युग है, मुरझाने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। जितना जितना मुरझाते हैं उतना उतना हम कौन से युगों की शूटिंग कर रहे हैं? द्वापर कलयुगी नरक की दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं। अभी हमारा भाग्य हमारी मुट्ठी में भगवान ने दिया हुआ है, कभी भी मुरझाए से नहीं आनी चाहिए। ऐसा भी टाइम आवेगा जो सारा समय बहुत ढेर के ढेर जिज्ञासुओं को समझाने में तुम्हारा चला जाएगा। क्या कहा है? हाँ, तुमको खाने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। दान देते रहेंगे तो फिर खुशी का पारा ऑटोमेटिक तुम्हारा चढ़ता जाएगा। जितना दान करेंगे उतना खुशी चढ़ती जाएगी। तो बाप पहचान देते हैं कि तुम किस किस को समझाओ। क्या किस किस को समझाओ? वो तथाकथित ब्राह्मण तो बड़े बड़े आदमियों के पीछे पड़े रहते हैं, 20 बार उनके पास जाओ तो भी ध्यान से सुनते ही नहीं, जैसे कि उनको पहचान ही नहीं है किसको समझाना चाहिए किसको नहीं समझाना चाहिए, किसको समझाना चाहिए। तुम्हारे कुल का होगा तो एक बार थोड़ा सा भी सुनेगा तो बुद्धि से चटक पड़ेगा। फिर और बातों में उसकी बुद्धि नहीं लगेगी, ऐसों को फिर खुद समझाना चाहिए। तो बाप कहते हैं एक तो वानप्रस्थियों को समझाओ, क्या इसको समझाओ, वानप्रस्थियों को समझाओ, और दूसरा मंदिरों में जाओ। हद में भी वानप्रस्थ होते हैं, बेहद में भी होते हैं। हद में भी मंदिर हैं और बेहद में मंदिर कौन से हैं? है कौन से मंदिर हैं? गीता पाठशालाएं भी मंदिर हैं और ये सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं वो भगवान भगवती हैं या देवी देवताएं होते हैं? वो देवी देवताएं हैं, उनके मंदिर कहाँ मिलेंगे? ब्राह्मणों की दुनिया में ही उनके मंदिर हैं बेहद के, या बाहर की दुनिया में है? कहाँ है? है बेसिक में। तो एक तो वानप्रस्थियों को समझाओ और दूसरे किसको? मंदिरों में जाकर के समझाओ। ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत फर्स्ट क्लास मंदिर है। लक्ष्मी नारायण के चित्त पर समझाना बहुत अच्छा है। उन पर लिखा हुआ भी है गॉड फादरली बर्थ राइट। उन्हों को वर्षा मिला है गॉड का, तभी तो गॉड गॉडेस कहे जाते हैं। इसे साबित होता है कि गॉड फादर भगवान ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उन लक्ष्मी नारायण को परमात्मा से वर्षा मिला है। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भाषण करना सबसे अच्छा है। इसलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझानी भी लिखवा रहे हैं, चित्र बनवाए रहे हैं, उनकी बायोग्राफी भी लिखेंगे तो मनुष्य समझेंगे। जैसे कल्प पहले चित्र बनाए हैं वैसे ही बनावेंगे। हमारा पुरुषार्थ कल्प पहले मुआफिक चल रहा है, फिर भी कर्म तो हमें करना ही है। कर्मेंद्रियां कर्म के बगैर नहीं रह सकती। कर्मधारा तो चलती रहेगी, कोई बैठ तो नहीं जाना है। परंतु इन बातों को समझाने में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। बाबा मम्मा और जो अनन्य बच्चे हैं उनकी प्रैक्टिस है। पहले पहले इंडिविजुअल समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाद में भाषण करना, जनरल भाषण करने का पुरुषार्थ करना है। और भाषण करने में सबकी हिम्मत चाहिए। यहां तो हर बात सीखी जाती है, बताना है कि योग से आयु बढ़ती है और ज्ञान से क्या मिलता है? ज्ञान से जन्म जन्मांतर के लिए धन मिलता है। यहाँ जितना बेहद का ज्ञान उठावेंगे उतना वहां जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बनेंगे। ये सूक्ष्म ज्ञान रतन ही तुम्हारे स्थूल धन बन जावेंगे। योग से आयु कैसे बढ़ती है? भविष्य जन्मों के लिए ही आयु बढ़ेगी या यहाँ इस जन्म में भी आयु बढ़ सकती है? कैसे? आत्मिक स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें कर्मेंद्रियों के किए हुए कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। जैसे वो हठ योगी होते हैं, कहते हैं हर मनुष्य आत्मा के जीवन में श्वास हैं, जितनी श्वासें हैं उतनी आयु होगी। तो वो तो कुंभक लगा करके श्वास रोक करके बैठ जाएंगे, समझते हमारी इससे आयु बढ़ जाएगी। परंतु श्वास रोकने की बात नहीं है, ये तो आत्मिक स्थिति में बैठने की बात है। निरंतर आत्मिक स्थिति पक्की हो जाए, जिनकी आत्मिक स्थिति पक्की होती जावेगी उनकी भूख प्यास भी कम होती जावेगी। ये पाठशाला है जहां मनुष्य से देवता बनते हैं। ये सतयुग में देवी देवताएं थे, ये तो झूठ खंड है। झूठ खंड में झूठ बोलने वाले, दुख देने वाले राक्षस होंगे या देवता होंगे? अभी तो वो देवताएं नहीं है। कर्म इंद्रियों से दिव्य कर्म करने वाले कोई भी नहीं है। इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। अभी नहीं है, फिर होने चाहिए। भगवान आए, आप समान शांति का सागर, सुख का सागर बनाते हैं। नंबर बार, अभी हम नंबर बार देवी गुण धारण करते हैं तो देवी देवता बनते हैं। और बनना है तो बहुत सहज, परंतु आज की दुनिया के जो बड़े बड़े आदमी हैं, उनको ये ज्ञान उठाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? हैं? क्योंकि उनको दुनियावी मान मर्तबा बहुत चाहिए, तुमको तो ईश्वरीय मर्तबा पाना है। तो दुनियावी बड़े बड़े आदमियों पर वायलेंस की जिम्मेवारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें ही बिजी हो जाते हैं। इसलिए उनमें से बहुत मुश्किल निकलेंगे। और तुम्हारे पास देखो कौन है, दुनियावी मान मर्तबे वाले बड़े बड़े आदमी हैं या अल्याएं गड़िकाओं की संख्या ज्यादा है? और खास तेरा नाम तब निकलेगा जब भीलनियों गणिकाओं की सभा में भाषण करेंगे और भाव और वो भाषण के दौरान साक्षात्कार में चली जावेंगी।
फिर बैठ सन्यासियों को ज्ञान देंगी। कौन? जब वो सन्यासियों को बैठ ज्ञान देंगी तो तेरा नामाचार तब बढ़ेगा। जब तुम दुनिया के जो लोएस्ट से लोएस्ट हैं, जिनका कोई मान मर्तबा नहीं है, उनको ज्ञान दो, फिर वो दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों को ज्ञान देंगी। इस समय तो ऊंचे महात्मा हैं, उन बड़े बड़े सन्यासियों महात्माओं को तुम ही ज्ञान देंगे। आगे चल करके इन सन्यासियों को तेरे आगे झुकना पड़ेगा। अभी तो तेरा बहुत सामना करते हैं और आगे और भी करेंगे। तुम्हारी तो शक्ति सेना है, फिर तेरा नाम बहुत बाला हो जाएगा। अभी तो हर बात में चीटी मार की सर्विस है। चीटी कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है, फिर हर बात में बेहंग मार की सेवा होगी। बेहंग माना क्या? बड़े बड़े पक्षी होते हैं, उनको बेहंग कहा जाता है। जैसे मोटर पहले बनने में 3-4 वर्ष लगे थे, फिर 3-4 महीने लगे, अभी तो एक मोटर बनाने में कितना टाइम लगता है? मिंटो मोटर, 1 मिनट में एक मोटर तैयार हो जाती है बड़े बड़े कारखानों में। मोटर आगे बढ़ती जाती है, एक एक पुर्जा लगाने वाले पुर्जा लगाते जाते हैं, आखिर में फिनिशिंग करने वाला आखिरी फिनिशिंग करेगा, 1 मिनट में एक मोटर निकालता जाएगा। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।